Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhilanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti ke kan kan mein anusyut nirakar parmatma aur usi nirakar parmatma ke sakar roop mein upasthit श्रोता भाइयों और बहनों, कल हमने देखा कि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय इसलिए है कि वह अपना आपा होते हुए भी हमें समझने के लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। दुर्विज्ञेय इसलिए है क्योंकि वह सिर्फ शास्त्र के द्वारा संस्कारित की हुई बुद्धि से ही जाना जा सकता है। दुर्विज्ञेय इसीलिए है कि हमने जो परमात्मा शब्द का अर्थ मान के रखा है, उससे यह आत्मतत्व या ब्रह्मतत्व संपूर्ण रूप से भिन्न है। दुर्विज्ञेय इसीलिए है कि उसके लिए जो चित हमारा युगों से यह विषय के संस्कार में पड़ा हुआ है, उससे हटाकर हमें परमात्मा चिंतन के लिए उसे प्रवृत्त कराना होगा और इसीलिए लोगों को यह मुश्किल लगता है। कई लोग यह सुनकर ऐसा कहते हैं, स्वामी जी बहुत मुश्किल है, कठिन ही है समझना। हां, बात सही है, कठिन ही है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमने जो मान रखा है उससे यह संपूर्ण रूप से भिन्न है। जैसे आइंस्टाइन की E=mc² जो थियोरी है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, वह समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सबके लिए वह सुगम नहीं है और इसीलिए यह आत्मा दुर्विज्ञेय है। उतना ही नहीं, वह आत्मा उपाधि सहित भी है एवं उपाधि रहित भी है, इसलिए लोगों की बुद्धि में ठीक से बैठ नहीं सकता कि वह है कैसा, उपाधि वाला है, साकार वाला है या निराकार वाला है। आप तो कह रहे हैं साकार भी है, निराकार भी है, और फिर बाद में कहेंगे साकार निराकार से भी परे है। ठीक से बात बताइए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, कुछ ठीक बताइए। हमारी बुद्धि में यह बात बैठ नहीं रही है। साकार नहीं होगा तो चलो निराकार होगा, निराकार भी वास्तव में तत्व के दृष्टिकोण से नहीं है। वो तो साकार को हटाने के लिए, साकार की जो स्थूल बुद्धि है उससे निवृत्त कराने के लिए निराकार है। फिर बाद में निराकार से भी बुद्धि हटा लेनी है, इसलिए यह आत्मा या ब्रह्म तत्व दुर्विज्ञेय है। हे नचिकेता, आपको मेरे जैसा सद्गुरु कहां प्राप्त हो सकता है, यानी यह समझाने के लिए मेरे जैसा सामर्थ्य वाला कौन है, यह यमराज कह रहे हैं। इतना कहने के बाद आत्मज्ञान से फल क्या मिलता है वह भी हमने कल देखा। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचति। अनित्य शरीरों में नित्य और अनेक शरीरों में एक आत्मा, यह जानकर ज्ञानी व्यक्ति कभी शोक या दुख नहीं करता। यह दो मंत्र देखने के बाद में अगर यह आत्मा दुर्विज्ञेयी है तो हमारे पल्ले तो नहीं पड़ने वाला, हमारे बस की बात नहीं है। उसे तो अच्छा है मंदिर में गए, दर्शन किया और भगवान की छवि हमारे दिल में बैठ गई, वो अच्छा है। लेकिन यह आत्मा इतना भी दुर्विज्ञेय नहीं है, सुविज्ञेय हो सकता है। कैसे हो सकता है बतला दीजिए। उसका उत्तर आज हम मंत्र नंबर 23 में, वल्ली नंबर 2 मंत्र नंबर 23 उसमें देखेंगे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वा। यह परमात्मा वेद अध्ययन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। उतना ही नहीं, मेधा शक्ति से भी प्राप्त नहीं हो सकता, बहुत सुनने मात्र से ही भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो साधक इस आत्मा का वर्ण करता है, पसंदगी करता है, उसी से ही आत्मा प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा उस साधक के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट करता है। यह अनुवाद हुआ। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। भाष्यकार कहते हैं यह आत्मा प्रवचन से यानी वेद अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त होगा। अगर इसका अर्थ प्रवचन भी ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रवचन से यह आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी तो फिर आप भी कर ही रहे हैं। नचिकेता को यमराज ने प्रवचन के तौर पे ही किया होगा, ऐसा उपदेश तो नहीं दिया होगा। तो अगर प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा तो फिर खामखा क्यों आप बैठे हो व्यास गद्दी के ऊपर? ऐसी बात नहीं है। प्रवचन मात्र से ही प्राप्त नहीं होता। श्रुति भी कहती है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन के लिए प्रमाद करना चाहिए नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रवचन के लिए तो जो तैयारी करनी पड़ेगी वह तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वक्ता यह मान ले, बहुत सारी तादाद में लोग आ रहे हैं, पूरा हॉल जाम पैक हो जाता है, खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती, यहां पूरा फुल हो चुका है, नीचे भी बड़े बड़े स्क्रीन पे लगे हुए हैं, अगर उतना मान लेने से वक्ता अगर कृतार्थ हो गया, उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। कई प्रोफेसर ऐसे हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन कर सकते हैं कॉलेज के अंदर, जाहिर सभा में है, उसे सुनने बहुत लोग आते भी होंगे, लेकिन सिर्फ प्रवचन करने मात्र से यह आत्मा प्राप्त नहीं हो पाएगा। हां, प्रवचन साधन है, इतना समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं चलो खामोश हो जाए, चुप बैठ जाए रमण महर्षि की तरह, तो भी नहीं हो पाएगा। प्रवचन साधन है। किसके लिए? दोनों के लिए। प्रवचन करना होता है तो मुझे क्या बोलना है वो सबसे पहले मैं सोचूंगा, मेरे लिए भी साधन है, आप लोग सुन रहे हो आपके लिए भी साधन है। प्रवचन जरूरी है, साधन है, लेकिन वह साध्य नहीं है। प्रवचन करने मात्र से ही कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। लाखों की तादाद में आप फोटो देख रहे हैं, ये महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन उस मात्र से ही वह महात्मा ज्ञानी है ऐसा निर्णय नहीं हो सकता। प्रवचन जरूरी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन उससे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां कह दिया भाष्यकार ने, वेदाध्ययन एवं प्रवचन से यह आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। न मेधया, मेधा शक्ति यानी ग्रंथ को धारण करने की शक्ति, ग्रंथ में जो लिखा है उसे अपनी बुद्धि में धारण कर लिया शब्दों के द्वारा और समझ लिया कि हां यह भाष्य में ये कहा गया है, मंत्र में ये कहा गया है, उस धारण शक्ति मात्र से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न वेधया, और फिर बाद में आता है न बहुना श्रुतेन। देखिए मंत्र दृष्टा ने प्रवचन करने वाला को भी नहीं छोड़ा और फिर श्रोता को भी नहीं छोड़ा। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुना हमने, बहुत सुनने मात्र से भी यह प्रवचन प्राप्त नहीं होगा, यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे प्राप्त हो सकता है? समझिए, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, उस आत्मा को जो वर्ण करेगा, उस आत्मा का जो वर्ण करेगा, वर्ण माने पसंद करेगा, पसंद माने जैसे पार्वती जी है, पार्वती जी को उसकी मां और उसके बाप ने कई बार समझाया, तू इस शंकर से क्यों शादी करना चाहती है, रहने का ठिकाना नहीं, वस्त्र के भी ठिकाना नहीं, और अगर बारात आएगी तो बारात में अच्छे लोग तो होंगे नहीं, भूत प्रेत पिशाच ऐसे लोग होंगे, ऐसे आदमी के साथ तू क्यों शादी करना चाहती है? उसने एक ही उत्तर दिया, ब्याहूं तो शंकर को ब्याहूं, वरना कवारी रहूं। बस यही बात यहां है। यह आत्मा ही मुझे चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए, इसको यहां कहते हैं वरण। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, जो इसका वरण करता है, मुझे यह आत्मा ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता है, यमराज ने प्रलोभन बहुत दिए लेकिन उसने एक ही बात कही, जो वरदान के लिए आपने मुझे प्रश्न पूछने को कहा है वही मुझे चाहिए। तवै वाहा तव नृत्य गीते, आपके वाहन आपके नृत्य आपके गीत आपकी संपत्ति आपके पास ही रखिए, मुझे तो यह ही चाहिए। अगर ऐसी मन में ठान ली है कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, मुझे मोक्ष ही चाहिए, अगर ऐसी ठान ली है मन में, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करते करते फिर भी मैं परमात्मा ही चाहूंगा, अगर ऐसा ठान लिया तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन हमें तो भोग भी चाहिए और साथ में मोक्ष भी चाहिए, यह कैसे संभव हो पाएगा? दोनों चाहिए, दोनों कैसे होगा? या भोग करिए या मोक्ष प्राप्त करिए। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीरा दो ना मिले, एक ले दूजी दाल। चावल माने परमात्मा, दाल माने संसार। अब चीटी को या संसार चाहिए, या दाल चाहिए, या चावल चाहिए, दोनों अगर उठाने की कोशिश करेगी तो चींटी की हालत क्या होगी? आपको पता है वो चींटी कौन है? हम लोग ही। हमें संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, यह संभव नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोक्ष ही चाहूंगा। इसको कहते यहां वरण, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होगा। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वा, उसके लिए ही परमात्मा अपने आप को उस साधक के हृदय में अपने आप को प्रकट कर देगा। हो इसका अर्थ यह हुआ स्वामी जी कि आत्मा यहां से प्रकट होगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी साधक को तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्य तत्प्रबोधनम यह करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, मुझे सिर्फ यह परमात्मा ही चाहिए ऐसी दृष्टि रखकर श्रवण मनन निधि ध्यासन निरंतर करने, अगर जो व्यक्ति निरंतर करता रहेगा उसके लिए ही यह परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। यानी अज्ञान का आवरण निकाल देगा कौन? यह परमात्मा। कैसे? जैसे घास का बहुत बड़ा ढेर है, उस घास के बहुत बड़े ढेर को पेट्रोल या राकेल इस्तेमाल किए बगैर और माचिस की तितली भी इस्तेमाल किए बगैर आपको उसे जला देना है, आपके पास एक ही चीज है, इतना बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हां, सूर्य प्रकाश उस मैग्नीफाइंग ग्लास से परावर्तित करके वो घास के ढेर के ऊपर लगाएंगे, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। बस वैसी ही बात यहां है। आपके पास अंतकरण है, उस अंतकरण शास्त्र द्वारा संस्कारित है, तो श्रवण मनन और निध्यासन से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और भिद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशया क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर है। उस परमात्मा मैं ही हूं यह हमारे हृदय के अंदर स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे। यह ही है परमात्मा का अपने आप को प्रकट करना। ऐसा नहीं कि बड़ी साधना की और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए, राम प्रकट हो गए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए यहां कहा यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वा, उस साधक के प्रति परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। तो यह आत्मा संपूर्ण रूप से दुर्विज्ञेय है ऐसी बात नहीं है, सुविज्ञेय भी है, जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए साधक के चित्त में एक ही बात होनी चाहिए, जैसे पार्वती जी की थी, ब्याहू तो शंकर को ब्याहू, बस वैसी ही बात साधक के चित्त में होनी चाहिए। मुझे इसी जन्म में इसी मानव शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि यह मानव शरीर बाद में मिलने वाला है ऐसी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। फिर यह मानव शरीर मिलेगा क्या? पता नहीं स्वामी जी। तो साधक के प्रति परमात्मा के प्राप्त करने की अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा होगी परमात्मा प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहने के बाद और भी चीज है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए और भी कुछ आवश्यक अंग है, उस आवश्यक अंग का निरूपण 24वें मंत्र में कर रहे हैं। न विरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापे प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। जो व्यक्ति दुराचरण से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई और जिसका चित्त शांत नहीं है, उस व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मज्ञान के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए या मैं कौन हूं यह जानने के लिए कुछ आवश्यक अंग यहां दिखलाए गए हैं। जो व्यक्ति दुराचरण से निवृत्त नहीं हुआ, दुराचरण का अर्थ भाष्यकार करते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म कहे हैं वह न करना और निषिद्ध कर्म करना उसे दुराचरण कहते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या सोचते हैं, किसी का खून कर दिया, किसी के पैसे ऐंठ लिए, किसी की जमीन हड़प ली, यह ही दुराचरण। लेकिन वो बात नहीं है। शास्त्र में जो कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करने के लिए कहे गए हैं वह न करना वह है दुराचरण। कौन से कर्म है? यज्ञ, दान, तपः। यज्ञ, दान और तप, यह तीन कर्म जो है वह निरंतर करते रहने चाहिए। हम लोग इस बार इस वक्त कौन सा कर्म कर रहे हैं? यज्ञ कर्म है। स्वामी जी यहां तो कोई अग्नि नहीं दिखाई देती। स्वाध्याय भी एक यज्ञ ही है। क्यों? जैसे अग्नि में आहुति देते हैं उसी तरह हमारे जो भ्रांतियां है, गलत विचार है, गलत फहमी है, उसकी आहुति हम शास्त्र अग्नि के अंदर देते हैं। तो यह भी एक प्रकार से यज्ञ ही हुआ। दूसरे भी यज्ञ है, जैसे कोई भोजन के वक्ता आ गया तो उसे हम भोजन खिलाते हैं, वह भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। उतना ही नहीं, जब हम भोजन करने जाते हैं तो भोजन जब हम करते हैं तो वह यज्ञ की भावना से अगर करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। एक महात्मा है, उसने बहुत अच्छा अंतःकरण शुद्धि के लिए उपाय बताया। सरल है, कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी आज तो हम भोजन जो कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर केमिकल छिड़का हुआ होता है, शुद्ध तो मिलने की संभावना है ही नहीं, और जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर इस तरह की खुराक हम खाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो पाएगी? महाराज जी आप लोग तो प्रवचन करना जानते हो, लेकिन हमारी परिस्थिति यह है, हम जिस समाज में आज रह रहे हैं उसमें खुराक के बारे में यह बहुत बड़ी समस्या है। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो पाएगी, मन कैसे शुद्ध हो पाएगा, उसका उपाय भी महाराज जी ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में मंत्र शक्ति जो है वह वहां काम आ सकती है। जैसे सब्जी बाजार से लाए, उसके ऊपर वो सब फर्टिलाइजर केमिकल छिड़का हुआ है, उसे धो दे अच्छी तरह से और सब्जी बनाए, लेकिन जब ग्रास ग्रहण करते हैं और मुंह में जब डालते हैं तब मंत्र मन के अंदर बोलना चाहिए। जैसे आपके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है, ओम कृष्णाय स्वाहा, मन में बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि तो खाने की और बोलने की प्रवृत्ति साथ में नहीं हो पाएगी। या आपके इष्ट देव भगवान शंकर है तो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय स्वाहा, इदम् न मम। यह मंत्र पूर्वक ग्रास अगर मुंह में डालेंगे तो वह खुराक गया किसको? अपने इष्ट देव को गया, आपको तो नहीं गया। यह अगर प्रक्रिया आप 6 महीने तक करिए, सिर्फ 6 महीने तक, 6 महीने में आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। सिर्फ 6 महीना, लेकिन बराबर, हां, श्रद्धापूर्वक। जैसे कोई आदमी ऐसा है कि जिनको 30 दिन में से 20 दिन ट्रैवल के लिए घूमना पड़ता है बिजनेस की वजह से, घर में नहीं खा पाता, तो वहां भी यही सिस्टम लागू होगी। होटल में खाना पड़ रहा है, क्या करें, किस आदमी ने किस तरह से बनाया क्या पता। ऐसी परिस्थिति में भी यह मंत्रपूर्वक ग्रास ग्रहण करेंगे, आपका अन्न शुद्ध हो जाएगा। अन्न शुद्ध होगा, स्वाभाविक है मन भी शुद्ध हो जाएगा। शास्त्र में ऐसे कई उपाय हैं, लेकिन आगे जैसे आ गया, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, मुझे कुछ भी करके यह करना ही है, तो मैं बात कर रहा था यज्ञ की, यज्ञ दान और तप, यह नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। दान की भी प्रक्रिया शास्त्र में है, जितना कमाते हैं उसमें से 10% उनको दीजिए, 10% सिर्फ। क्यों? हमने पैसे कमाए हैं समाज से। कबीर जी बहुत अच्छा दृष्टांत थे उसके लिए। एक नाव जा रही है नदी में, थोड़ी हवा चल रही है तो पानी उछल उछल कर आता है नाव के अंदर, थोड़ी देर में पानी नाव के अंदर बढ़ने लगता है। सयाना आदमी जो अंदर बैठा है वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बस उसी तरह जितने पैसे हमने समाज से कमाए हैं अपने घर के अंदर, कम से कम उसका 10% समाज को दे देना चाहिए। क्यों? वह भी एक प्रकार का टैक्स है, धर्म का टैक्स। बिजली का टैक्स हम चुकाते हैं, वाटर टैक्स हम लोग चुकाते हैं, म्युनिसिपैलिटी टैक्स देते हैं, ऐसे ये धर्म का टैक्स है, देना ही चाहिए। इसीलिए यज्ञ दान और तप, तप भी क्या है वो हमने पहले देखा हुआ है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार जो भी हमारे लिए शास्त्र के अनुसार कर्म कहे गए, अगर हम संतोष पूर्वक अगर कर्म कर रहे हैं तो वह है हमारे लिए तप। उससे क्या होगा, हरितोषणात् अंतकरण की शुद्धि होगी। लेकिन जो व्यक्ति यह नहीं कर रहा है उसकी बात यहां कर रहे हैं, उसको कहते हैं यहां दुष्चरितात्, न अविरतः दुष्चरितात्। जो यह नहीं कर रहा है उसको यह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। फिर बाद में कहते हैं न अशांतः,